25 मई दिन सोमवार, दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं रेहान फजल। नरेंद्र मोदी ने मथुरा में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, बोले चले गए बुरे दिन।
15 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खुले, ये गैस सब्सिडी में चोरी होती है उसको रोक लिया जाएगा। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनके बैंक खाते में सीधी सीधी गैस सिलेंडर की सब्सिडी।
केजरीवाल ने भी अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कैनॉट प्लेस में अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई।
ट्रैफिक लाइट पे गाड़ी रुकती है, बगल में जो गाड़ी खड़ी हो वो मेरे को देखता है, शीशा नीचे करके सबसे पहला काम कहता है जी बिजली का बिल आ गया, कम हो गया मेरा बिजली का बिल।
होंगे आपके पत्रों के जवाब भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में अपनी सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर मथुरा में जन कल्याण रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने पिछली यूपीए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अब दिल्ली में दलालों की कोई जगह नहीं है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि एक साल में कोई घोटाला नहीं हुआ। भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से मरने वालों की संख्या 430 से ज्यादा हो गई है। इलाहाबाद में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्मी से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस महीने भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। नाइजीरिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक जीटी बैंक ने डीजल की कमी के कारण अपनी शाखाओं को बंद कर दिया। नाइजीरिया में गहराते बिजली संकट के कारण उद्योग और अन्य संस्थान जनरेटरों के सहारे चल रहे हैं। नाइजीरियाई सरकार और इम्पोर्टरों के बीच चल रहे संकट की वजह से ईंधन की भारी कमी बनी हुई है और उद्योगों में कामकाज ठप है। नाइजीरिया में बीबीसी के एक श्रोता डॉ लेके फॉलरान मी ने बताया बीबीसी को। नाइजीरिया में पेट्रोल स्टेशन सरकारी दाम पर पेट्रोल नहीं बेच रहे, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, सड़कों पर कम गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, काम पर जाने वाले लोग फंसे हुए हैं, लोग असमंजस में हैं कि क्या करें। सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया है। नाइजीरिया आर्थिक पतन की राह पर है। ये थे नाइजीरिया में बीबीसी श्रोता डॉ ले के फॉलोरानमी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मलेशिया की पुलिस ने दावा किया है कि 140 अनजान कब्रें मिली हैं जो कि थाईलैंड की सीमा के पास दूर दराज के जंगलों में पाई गई हैं। माना जा रहा है कि इनमें कुछ उन लोगों की लाशें हैं जिन्हें मानव तस्कर कहीं भेज रहे होंगे। ट्यूनिशिया की राजधानी ट्यूनिस में एक सैनिक बेस पर हुई गोलीबारी में कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि एक सैनिक ने गोलियां चलाई जिसमें 7 सैनिक मारे गए, बाद में वो खुद भी मारा गया। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक ये चरमपंथी हमला नहीं है। घटना से लोगों में मार्च महीने में ट्यूनिशिया के बारदो म्यूजियम में हुए चरमपंथी हमले की याद ताजा हो गई जिसमें 20 लोग मारे गए थे। चीन ने अमेरिका से आधिकारिक तौर पर शिकायत की है कि अमरीकी जासूसी विमान दक्षिण चीन सागर में उड़ रहा था जहां चीन कोई निर्माण कार्य करवा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका चीन के अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकता। बीबीसी समाचार।
दिनभर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। मथुरा में अपनी सरकार के एक साल पूरा होने पर की गई रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन लोगों के लिए बुरे दिन आने वाले हैं जिन्होंने देश को लूटा है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि देश के किसान उनकी प्राथमिकता होंगे। भाषण की शुरुआत में मोदी का जोर अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने से ज्यादा पहले की यूपीए सरकार की नाकामियों और उनके भ्रष्टाचार पर तंज कसने पर रहा। वैभव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार का एक साल पूरा होने के मौके पर अपनी उपलब्धियां गिनाने से पहले पिछली यूपीए सरकार की कारगुजारी पर निशाना साधा। वे अपनी सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर मथुरा में जन कल्याण रैली को संबोधित कर रहे थे। उनका कहना था कि यूरिया पर नीम की कोटिंग से अब इसकी चोरी नहीं होगी। सेल्फ एफिडेविट करके भारत के नागरिकों पर भरोसा किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए होगी और आने वाले दिनों में 1300 कानून खत्म किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में दलालों की कोई जगह नहीं है और जिनके इशारों पर 60 साल तक फैसले होते थे उनके लिए बुरे दिन आ सकते हैं।
लेकिन देश हम ऐसे चलाएंगे कि बुरा करने वालों के और बुरे दिन आते रहेंगे, बुरा करने वालों के बुरे कारनामे बंद होके रहेंगे।
जनसंघ के नेता दीनदयाल उपाध्याय के गांव नगला चंद्रभान में हुई रैली में उन्होंने पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक साल पहले बुरे दिन थे, बुरे कर्म थे और बुराइयों से भरा माहौल था, लेकिन एक साल के बाद का ये परिवर्तन वो नहीं लाए परंतु लोगों की वजह से ये बदलाव आया है। मोदी ने कहा कि भारत की राजनीति को 3 महान चिंतकों ने प्रेरणा दी, जो हैं महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय। उनका कहना था कि तीनों के चिंतन में देश का गरीब, किसान और मजदूर रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इन्हीं के चिंतन पर आगे बढ़ रही है। मोदी ने कहा कि एक साल पहले रोज नया घोटाला सामने आता था, अफसरों के जेल जाने की नौबत आती थी। उन्होंने अपनी बात याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नहीं प्रधान संतरी बनकर जनता के हितों की रक्षा करेंगे और कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि धन्ना सेठ की जेब में बैठे लोगों ने कोयले की खदानें लूट ली थीं, परंतु उनकी सरकार ने सिर्फ 29 खानों की नीलामी से 3,00,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा किए हैं। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए उन्होंने कहा
15 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खुले, ये गैस सब्सिडी में चोरी होती है उसको रोक लिया जाएगा, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनके बैंक खाते में सीधी सीधी गैस सिलेंडर की सब्सिडी पहुंचती है।
मोदी ने कहा कि उनकी सरकार को किसानों की परवाह है और केवल 3 साल में हर किसान के हाथ में सॉयल हेल्थ कार्ड होगा।
नदियों को जोड़ने का काम हो, पानी को पहुंचाने का काम हो, जल संचय का काम हो, टपक सिंचाई हो, माइक्रो इरिगेशन हो।
उन्होंने कहा कि एक साल पूरा होने पर किसी राजधानी या बड़े शहर में रैली आयोजित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी को सलाह दी कि इसे अंत्योदय का मार्ग दिखाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मभूमि पर आयोजित किया जाए।
मथुरा में नरेंद्र मोदी की रैली। उधर अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली के मध्य में कैनॉट प्लेस में अपने मंत्रिमंडल की खुली बैठक बुलाई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो पानी, शिक्षा, महंगाई, महिला सुरक्षा और प्रदूषण हटाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथी सलमान रावी अभी अभी कैनॉट प्लेस से वापस लौटे हैं। बताइए क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने वहां।
एक तरह से अगर उसको ये समप किया जाए कि एक पैरेलल की तरह की रैली जो है उन्होंने आयोजित की, कि एक तरफ नरेंद्र मोदी मथुरा में कर रहे थे तो शायद इसीलिए कि वो बिल्कुल ऑरा बना रहे, तो दिल्ली सरकार के 100 दिन की जो ये दिल्ली की कैबिनेट जनता के बीच के नारे के साथ ये पहुंचे और कनॉट प्लेस के बीचों बीच पूरे मंत्रिमंडल के साथ तो वो थे ही। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी जो है मुख्य सचिव के शर्मा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी शकुंतला गामलिंग, जिनको लेकर काफी विवाद हुआ, वो भी मंच पर मंत्रियों के साथ मौजूद थीं जो आम आदमी पार्टी के। और अरविंद केजरीवाल ने अपने शुरुआती जो भाषण उन्होंने आते ही दिया उसमें उन्होंने अपने 100 दिन की उपलब्धियां गिनवानी शुरू की।
तो पूरे दिल्ली के अंदर लोग महसूस तो कर रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है बहुत सारे काम हुए हैं। मैं 2-3 मिनट बोलूंगा, उसके बाद हमारे एक एक मंत्री अपने काम की व्याख्या देंगे और उसके बाद मैं फिर आराम से आप लोगों से बातचीत।
अरविंद केजरीवाल के मंत्री भी बारी बारी से बोलते रहे, हर विभाग का मंत्री खड़ा हुआ और उसने अपने विभाग की उपलब्धि गिनवाई। और लेकिन जो उसमें सबसे बड़ा पंच जो था, जो ये विवाद चल रहा है दिल्ली की सरकार का और केंद्र सरकार के बीच का, उसमें हाईकोर्ट के फैसले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया केंद्र के ऊपर।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्र सरकार को और गृह मंत्रालय को एंटी करप्शन ब्रांच, दिल्ली की जो एंटी करप्शन ब्रांच है, उसके मामले में दखल अंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं है।
तो ये लोगों के बीच में काफी शोर शराबा आपने सुना पीछे से कि काफी खुश थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस विवाद को जो चल रहा है ये मानते हैं कि दिल्ली में उनका कहना था कि सरकार को चलने नहीं दिया जा रहा है केंद्र द्वारा। कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरी बातचीत हुई।
केजरीवाल के अलावा दूसरा कोई सीएम नहीं है मोदी जिससे जाके बात कर सकते हैं,
या पूरे हिंदुस्तान में एक ही मुख्यमंत्री
सीएम बचा है वो
अरविंद केजरीवाल।
वही एलसीडी स्क्रीनें लगी हुई थी कनॉट प्लेस में, वहां पर कुछ आम लोग मौजूद थे, मैंने उनसे भी पूछ लिया टोकर।
किसी भी सरकार को पैर जमाने में थोड़ा टाइम तो देना ही चाहिए। आज ही उनकी पार्टी के आपस में बड़ा बहुत विवाद हुआ, वो गलत था, वैसे काम अच्छा कर दिया। केंद्रीय विवाद चल रहा है वो ठीक चल रहा है, केजरीवाल अपनी जगह ठीक है, जिनको 67 सीट मिली है।
ये थी आम आदमियों की आवाज जो बता रहे थे उनका क्या मूल्यांकन है जो कुछ दिल्ली की राजनीति में और देश की राजनीति में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सलमान रवि आपका।
दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे और रात 9:30 बजे।
क्रिस्टोफर बर्चेट ब्रिटेन के नागरिक हैं और पिछले 45 साल से वाराणसी में रह रहे हैं। बनारस के बाशिंदे होने के नाते उनकी वहां से सांसद नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में अपनी राय है। आजकल बनारस पहुंचे हमारे साथी नितिन श्रीवास्तव ने उनसे मिलकर पहला सवाल यही किया कि आपका भारत आना कब हुआ।
1970 में हम पहले आए थे, वो भी हमने सड़क रास्ते से आए, तो हमने आसपास के देशों को भी हमने देख लिया है, खास करके पाकिस्तान वगैरह वगैरह, ईरान, अफगानिस्तान, उस जमाने में हमने देखे है जबकि अमन चैन रहा।
पिछले एक साल में बनारस में जो हुआ है वो काफी हैरत अंगेज रहा होगा आपके लिए, क्योंकि एकदम से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने तय किया गुजरात नहीं, यहां से आकर चुनाव लड़ेंगे, यहां से एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद जीते भी और प्रधानमंत्री बने। क्या दिखा सर एक साल में, आप तो यहां 45 साल से।
एक बरस में बहुत कुछ देखने के नहीं मिला है, जितना लोगों ने उम्मीद कर रखी है कि बहुत परिवर्तन हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी, ऐसे नहीं हो पाए। और ये भी सत्य है कि मोदी जी चूंकि अब प्रधानमंत्री है, उसकी विचारों कई जगह बांटे हुए हैं, उसको विदेश नीति को देखना है, अपने देश के अंदर क्या समीकरण हो रहे उसको भी ध्यान देना है, और महज पैसा बनारस को देने से बनारस की उन्नति नहीं होनी है।
जी ऐसा सुना है कि हजारों करोड़ सैंक्शन हो रहे हैं, आगे होंगे। साल भर पहले मैं बनारस आया, बीच में भी आया, तो बनारस तो वैसे का वैसा है। मोदी जी ने गंगा घाट पे खुद खड़े होकर कहा था कि गंगा माँ ने बुलाया है और वो यहाँ पर कुछ देने आए हैं शहर को।
बनारस की जो प्राचीन बनारस है कायम है अपने जगह पर, जो नया हिस्सा है बनारस की जो डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, वो मल्टी स्टोरी फ्लैट्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, वो कुछ अलग चीजें दिखने लगी। ये सब हमारे नजर में तो ये बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन एक समस्या है कि लोग रहेंगे भी कहाँ।
आप तो इंग्लैंड में रहे, बचपन आपका इंग्लैंड में बीता, जवानी इंग्लैंड में बीती, उसके बाद से यहाँ पर आप हैं 45 साल से, क्यों आपको ऐसा नहीं लगता, क्या आपको लगता नहीं है कि बनारस को भी इंग्लैंड की तरह या और दूसरे शहरों की तर्ज पे बनाया जाए, यहाँ विकास हो, बिजली पानी सड़क की सुविधा हो, शहर में कूड़ा करकट ना दिखे, गंगा नदी के घाट साफ हो।
नहीं ये सब ठीक है, लेकिन दूसरे शहर की तरह क्यों दिखने लगेगी, बनारस को क्यों नहीं दिखेंगे।
साफ सफाई के लिहाज से
नहीं, साफ सफाई तो वो व्यवस्था की बात है, ये हमारे आपके बस का नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर हम अपने साफ सफाई रख सकते हैं, लेकिन जो घर का कूड़ा है वो कहाँ डालें, जब तक आप कोई प्रबंध नहीं करेंगे तो मैं कहाँ डालूं। हाँ अगर उस तरीके से आप दूसरा जगह देखने चाहेंगे तो व्यवस्थित रूप से लोगों को सिखाया जाता है कि इस तरीके से आप अपने कूड़ा करकट जो है इस तरीके से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग अलग कर करके उसका पैकिंग करके रख दीजिए, हफ्ते भर में या दो बार हफ्ते में हम लोग कलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर रहने का तरीका है कि रोज का कूड़ा फेंक दिया जाता है, ये कोई व्यवस्थित रूप नहीं है। तो या आप कोई व्यवस्था बना दीजिए जिससे आप लोगों को बताएंगे कि नहीं आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप दंडित होंगे।
क्रिस्टोफर साहब मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मूल रूप से भारतीय नहीं है, आप 45 सालों से यहाँ पर हैं, आपकी वाइफ एक भारतीय है, आप एक इंग्लिशमैन हैं, अभी भी आपके पास पासपोर्ट है इंग्लैंड का, नागरिकता ब्रिटेन की है। अगर मोदी जी के पिछले एक साल के कार्यकाल को मैं आपको 10 पॉइंट के स्केल में नंबर करने को कहूं, आपसे उनको वो पॉइंट देने को कहूं 10 पॉइंट के स्केल में या ग्रेड देने को कहूं, तो आप कितने अंक देंगे उन्हें, कितने ग्रेड देंगे?
एक तो एक साल में पुराना व्यवस्था को परिवर्तित करना तमाम कठिनाइयां है उसके सामने, तो बहुत कुछ देखने का नहीं मिल रहे हैं। अभी भी जो पुराने व्यवस्था है वो अभी कायम है। सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है, ये एक कल्चर, एक
सोच की बात है,
सोच की बात है। मोदी जी जो काम किया है अभी बहुत कुछ देखने को नहीं मिला है। ग्रेडिंग की जो बात आप कह रहे हैं, सी प्लस बी माइनस के रेंज में ही रहेगी, क्योंकि ये भी उसका गलती नहीं है। चुनाव के समय में जो उन्होंने वादाएं किया है अगर वो पूरा करे तो बहुत ही अच्छी बात है। सबको नौकरी मिले, रहने की आवास मिले, खाना मिले, देश में उन्नति हो, ये खराब सोच नहीं है। लेकिन खाली सोच में रह जाए तो कोई फायदा नहीं। खाली कह देने से अगर 1 लाख नौकरी मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो यही नजर नहीं आ रही कि 1 लाख नौकरियां मिल गई कहीं।
बनारस के बाशिंदे क्रिस्टोफर बर्चेट से बात कर रहे थे नितिन श्रीवास्तव। ये बीबीसी है, आप दिन भर का पहला अंक सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। मलेशिया की पुलिस ने थाईलैंड और मलेशिया की सीमा के पास मिली सामूहिक कब्रों की जांच शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर मलेशिया और इंडोनेशिया की सरकारों ने अस्थायी रूप से प्रवासियों की मदद करने के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार भी लगाई है कि इस समस्या का समाधान किया जाए। विपक्षी नेता मलेशिया की सरकार पर दबाव बना रहे हैं और फिलहाल ऐसे कई प्रवासी हैं जो बिना किसी मदद जंगलों में और नावों में भटक रहे हैं। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए वैभव श्रीवास्तव से।
मलेशिया पुलिस के अनुसार इंसानों की तस्करी के लिए इस्तेमाल होने वाले 28 शिविरों में लगभग 139 प्रवासियों की कब्रें बरामद हुई हैं। समुद्री रास्ते के जरिए गैरकानूनी ढंग से मलेशिया में आने वाले प्रवासियों को रोकने के लिए और ऐसी इंसानों की तस्करी से जुड़े लोगों के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए पुलिस ने सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। ये सभी तस्करी शिविर थाईलैंड की सीमा के पास स्थित हैं। राष्ट्रीय पुलिस के अध्यक्ष खालिद अबू बकर ने कहा कि 11 मई से खोजी गई कई कब्रों में एक से ज्यादा शव हो सकते हैं। पुलिस अध्यक्ष ने कहा,
वी हैव डिस्कवर्ड 139 व्हिच वी बिलीव टू बी,
हमने 139 कब्रें बरामद की हैं, पर हमें नहीं पता कि इनमें क्या है। जांच करने के लिए हमारे डॉक्टरों और अन्य विशेषज्ञों की टीम वहां जा चुकी है। कब्रों से अवशेष लाना भी एक गंभीर समस्या है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी अवशेषों को पूरी इज्जत से वापस ला सकें। राष्ट्रीय पुलिस अध्यक्ष खालिद अबू बकर के शब्द, तस्करी कर रहे लोगों ने कई प्रवासियों को समुद्र में ही छोड़ दिया है और कोई भी देश इन्हें अपनाने को तैयार नहीं। तस्करी करने के लिए ये तस्कर कई सालों से उत्तरी मलेशिया और दक्षिणी थाईलैंड के जंगलों का प्रयोग करते आए हैं। ज्यादातर प्रवासी रोहिंग्या मुसलमान समुदाय से हैं, जो अत्याचारों से बचने के लिए गैर कानूनी ढंग से म्यांमार और बांग्लादेश से पलायन करने की कोशिश करते रहते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश परिवर्तन के मुद्दों को देखती है, का कहना है कि थाईलैंड की कार्यवाही की वजह से कई लोग थाईलैंड के जंगलों में भटक रहे हैं। संगठन के सदस्य जेफरी लेबोविट्स ने कहा,
We've been providing medical assistance for several years of people.
हम कई सालों से कैदियों और शरण में रह रहे लोगों के लिए दवाइयां आदि उपलब्ध कर रहे हैं। हमने इन लोगों में थायमीन की कमी पाई है। इस बीमारी की वजह से शरीर पर से मोटापा और चर्बी बिल्कुल खत्म हो जाती है और इंसान केवल हड्डियों का ढांचा बन जाता है। ऐसे बीमार लोग तस्करों के कोई काम नहीं आते। हमें लगता है कि ये कब्रें ऐसे ही बीमार लोगों की हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के सदस्य जेफरी लेबोविट्स के शब्द। दूसरी ओर मलेशिया के विपक्षी नेता रसिया सिवरसा ने तस्करी के मामले में सरकार पर निशाना साधा और कहा,
The manner in which this trafficking is happening, for me, clearly shows that there is collusion.
मुझे लगता है कि तस्करी की ये घटनाएं प्राधिकरण के साथ उच्च स्तर पर सांठगांठ के बिना नहीं हो सकती। बड़ी तादाद में मानव तस्कर इन लोगों को लाते हैं और फिरौती की रकम मिलने के बाद छोड़ देते हैं। अगर रकम नहीं मिलती तो इन्हें बेच दिया जाता है। मैं इस बात को नहीं मानता कि इतनी बड़ी तस्करी की सरकार को कोई खबर नहीं। विपक्षी नेता रसिया सिवरसा के शब्द। बीबीसी के जांचकर्ता जोनाथन हेड कहते हैं कि थाईलैंड की सीमा के पास मलेशिया के शिविर ऐसी जगह पर हैं जहां आसपास भारी संख्या में आर्मी और पुलिस रहती है। इसके बावजूद क्यों अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया? पहले से ही तस्करी पर सख्त कार्यवाही करने से कई जानें बच सकती थीं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अब इंडोनेशिया और मलेशिया ने कहा है कि वो अस्थायी रूप से प्रवासियों को सहारा देंगे, परंतु उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रवासी मुद्दे पर कुछ ठोस उपाय सोचना होगा।
थाईलैंड और मलेशिया की सीमा के पास मिली सामूहिक कब्रों की जांच शुरू। और अब बारी है आपके पत्रों की। आपकी राय के साथ हैं निखिल रंजन और विदित मेहरा।
आपकी राय में स्वागत है आपका। नमस्कार, स्वीकार करिए निखिल रंजन का। मेरे साथ है विदित मेहरा, जिनके हाथ में मैं बहुत सारे पत्र देख रहा हूँ।
जी हाँ, बहुत सारे पत्र आए हैं। सबसे पहला पत्र है राजेंद्र सिंह राज का, जो आया है जेलवाड़ी दंतेवाड़ा बस्तर छत्तीसगढ़ से। ये साहब लिखते हैं कि कोकिला कंठ स्वर सम्राज्ञी अचला शर्मा की आवाज मुद्दतों बाद कानों में मधुर रस घोलकर खुशियों से सराबोर कर बीबीसी को सुनाकर फिर कहीं गुम हो गई। पुरोधा गुणीजन कैलाश बुधवार जी से बीबीसी के उद्गम से लेकर शने शने प्रगति पथ की कहानी सुनकर किसी अतीत के चलचित्र के मानिंद मंजर दर मंजर नजारा सामने से गुजरता रहा। पिछले 45 बरस से बीबीसी की निष्पक्ष विश्वसनीय ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक रचनात्मक विवेचनात्मक एवं समीक्षात्मक कार्यक्रमों को सुनने का असर है कि ये व्यक्ति सेना में सिपाही से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में कंपनी कमांडर पद पर पहुंच चुका। मेरी तरफ से ऐसे रोचक कर्णप्रिय प्रस्तुति के लिए अचला शर्मा के साथ पूरी टीम को ढेरों बधाइयां प्रेषित कर रहा हूं।
ये इनका नाम तो बताइए, कौन सा है? नाम ये कोई फौजी भाई लगते
जी,
हैं
जी जी जी।
इन्होंने बड़ी अच्छी हिंदी में ये पत्र लिखा है और मैं बड़ा आभारी हूं इनका इस बात के लिए कि इन्होंने शुद्ध हिंदी में जिस तरह से हमारी जो पुरानी प्रसारक हैं अचला शर्मा और कैलाश बुधवार की तारीफ की है। खासतौर से जो 75 साल के हमारे कार्यक्रम, इस पर लगातार चिट्ठी आ रही है। हम सभी श्रोताओं के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने बड़ी शिद्दत से उन्हें सुना है और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेजी है। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी अगर मुमकिन हो तो इन लोगों को हम अपने कार्यक्रमों में शामिल कर सकें। अगला पत्र पढ़िए।
अगला पत्र है, वो आया है रफीक इब्राहिम पारकर का, रत्नागिरी महाराष्ट्र से। लिखते हैं, 75 वर्ष श्रृंखला में रेहान फजल और अचला शर्मा ने जो दो कार्यक्रम पेश किए वाकई मन को मोह गए। आपसे अनुरोध है कि पुराने कार्यक्रम इंद्रधनुष की कोई रिकॉर्डिंग सुनवाए। 8 मई को ब्रजेश उपाध्याय की थप्पड़ की गूंज बहुत पसंद आई। राजेश जोशी की आवाज और अंदाजे बयां खूब है।
इब्राहिम साहब, हम कोशिश करेंगे कि किसी दिन आपको इंद्रधनुष की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनवाई जाए। आपने ब्रजेश उपाध्याय और राजेश जोशी की जो तारीफ की है हम उन तक जरूर पहुंचा देंगे।
अगला पत्र है भागलपुर बिहार से डॉक्टर हेमंत कुमार का। ये कहते हैं कि बीबीसी हिंदी सेवा का नियमित तथा पुराना श्रोता हूं मैं। आपके द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रम तथा प्रसारण गुणवत्ता उच्च स्तर के हैं। 21 मई को सुबह की सभा नमस्कार भारत के दूसरे अंक में निखिल रंजन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भारत और मंगोलिया के बीच मजबूत होते रिश्ते पर विस्तार पूर्वक दी गई जानकारी रोचक तथा सूचना प्रद लगी। बेहतर प्रस्तुति के लिए निखिल रंजन जी को हार्दिक धन्यवाद। क्या बात है निखिल, आपकी तो मतलब बधाई।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर हेमंत कुमार जी, और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको ऐसे विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराएं जो आम तौर पर समाचार माध्यमों में जल्दी नहीं मिलती है। मंगोलिया एक ऐसा ही विषय था हमारे लिए और लोगों ने भी उसकी तारीफ की है, हम आभारी हैं आपके।
जी, अगला पत्र है भोजीपुरा बरेली से ओम प्रकाश पांडे मंजुल का। लिखते हैं कि आप इंडिया बोल का नाम भारत बोल, बोल भारत या बोल भारत बोल क्यों नहीं रख लेते। आगे लिखते हैं कि आप पत्रों का वाचन करने से पहले पत्रों पर विहंगम दृष्टि जरूर डाल लिया करें ताकि पत्रों की गुणवत्ता के आधार पर पत्रों को चुना जाए। कुछ लोग मात्र अपना नाम सुनने के लिए आपको पत्र भेजते हैं, सही कह रहे हैं क्या ये?
ये आपका जो है ये आरोप हो सकता है, लेकिन हमारी ऐसी कोशिश जरूर होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पत्र शामिल करें और खासतौर से उन लोगों के पत्र तो जरूर शामिल करें जिन्होंने कुछ अच्छी बात लिखी है या जिन्होंने बहुत वाजिब शिकायतें की है। आपको विरित, आपने तो देखा ही होगा कि रेहान जी और राजेश जी बड़ी शिद्दत से पत्रों को चुनते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल।
और इसमें जो है आपने जो सुझाव दिया है कि इंडिया बोल का नाम बदलने की, तो आपका सुझाव अच्छा है, इस पर हम विचार करेंगे और अगर इस मामले में बात आगे बढ़ी तो आपको जरूर सूचित करेंगे, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया होती है और इसमें समय लगता है।
जी, और अब अगला पत्र जो है वो है मालिकपुरा गाजीपुरा से ऋषिकेश गुप्ता जी का। लिखते हैं, बुरा मत मानिएगा, बीबीसी की खबरों और रिपोर्टिंग में विश्लेषण की गुणवत्ता समाप्त हो गई है। इस बात का ताजा प्रमाण भारतीय प्रधानमंत्री की 3 देशों के संदर्भ में देख सकते हैं, जिसमें उनके जूते एवं कोट के रंग के साथ मंगोलिया और चीन के खानपान एवं मनोरंजन की रिपोर्टिंग की गई, लेकिन इन यात्राओं का क्या कूटनीतिक और राजनीतिक मतलब है, इस पर कोई समीक्षा नहीं की गई।
ऋषिकेश गुप्ता जी, आपकी शिकायत हमने सुनी है, लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि शायद आपने हमारे कुछ कार्यक्रम नहीं सुने जिसमें हम लोगों ने कई ऐसे पुराने राजनयिकों से बात की थी और उनके यात्राओं की समीक्षा की गई थी। खुद मैंने भी एक पुराने हमारे जो राजनयिक है उनसे बात की थी और वो नमस्कार भारत के अंक में गया था। इसके अलावा अभी आपने सुना कि मंगोलिया पर भी जो विश्लेषण हुआ वो भी उनकी यात्रा से ही जुड़ा हुआ था। तो हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी रिपोर्टिंग भी सुनी हो, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जो गंभीर विषय हैं उनको जरूर उठाए जाएं और उनको पूरा सम्मान मिले।
जी
तो विदित, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मेरे ख्याल से बहुत सारी चिट्ठियां हो गई हैं और अगली बार हम कुछ और चिट्ठियों को लेंगे। पता बता देते हैं।
जी पता है आपकी राय, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप ईमेल से लिखना चाहें तो निखिल, ईमेल का पता क्या है?
hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब एक नजर खेल समाचारों पर। हमेशा की तरह आज भी तैयार हैं आदेश कुमार गुप्त। सबसे पहले क्या बताने जा रहे हैं आदेश?
जी देखिए, अगर आईपीएल की बात की जाए तो कल शाम को वो समाप्त हो चुका है और चेन्नई की टीम इस मुकाबले को हार गई। उसे काफी कमी खली अपने सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम की, लेकिन मैकुलम क्या करते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के कप्तान हैं वो और लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है वहां वो मौजूद हैं और यकीनन कहीं ना कहीं बाद में कल चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी माना कि जब एक ऐसा बैट्समैन जो किसी भी गेंदबाजी के खिलाफ अच्छा खेल सकता है, चाहे पहला ओवर स्पिनर करे या फिर तेज गेंदबाज करे, तो उनकी कमी खलती है और बाकी बल्लेबाज एकदम से इस भूमिका को सही तरह से नहीं निभा पाए। अब खैर आईपीएल में जो होना था वो हो चुका, लेकिन अगर मैकुलम की बात की जाए तो उनकी टीम न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ काफी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन फिलहाल वो मैच जीतने के लिए जहां तक कल तक नजर आती थी, आज वो खुद अपनी जान बचाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंग्लैंड ने उसके सामने जीत के लिए 345 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन थोड़ी देर पहले उसका स्कोर 5 विकेट खोकर 113 रन था। टीम की हालत तो तभी खराब हो गई थी जब एक समय 12 रन पर ही उसके 3 विकेट आउट हो चुके थे। इससे पहले अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो कल के स्कोर 6 विकेट पर 429 रन से आगे खेलते हुए आज इंग्लैंड की दूसरी पारी 478 रन पर समाप्त हुई और इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 162 रनों का योगदान दिया। उन्होंने 345 गेंदों का सामना किया और इस दौरान उन्होंने 17 चौके लगाए। कल उन्हें बहुत अच्छा सहयोग मिला था बेन स्टोक्स का, जिन्होंने 101 रन बनाए थे। काफी तूफानी पारी उन्होंने खेली थी, अगर तुलना की जाए एलिस्टर कुक के मुकाबले उन्होंने केवल 92 गेंदों पर ही 101 रन बनाए थे। और मोइन अली बहुत अच्छे टैलेंटर साबित हुए, जिन्होंने एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाई एक तरह से इस मैच में, क्योंकि उन्होंने 43 रन बनाए। बाकी बल्लेबाजों को आउट करने पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कोई परेशानी नहीं हुई। ट्रेंट बोल्ट ने 85 रन देकर 5 विकेट लिए, टीम साउदी ने 162 रन देकर 2 विकेट लिए, मैट हेनरी ने 106 रन देकर 2 विकेट लिए और मार्क क्रिक ने 96 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। तो इस तरह से अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो रेहान साहब यहां पर बड़ी तारीफ करनी होगी, क्योंकि एक ऐसी टीम जो पहली पारी के आधार पर 134 रन से पिछड़ रही थी, क्योंकि
जबरदस्त कमबैक उनका।
जी हां, यही टेस्ट मैच की खूबी है, क्योंकि इंग्लैंड ने पहली पारी में 389 रन बनाए थे और न्यूजीलैंड की पहली पारी 523 रन के स्कोर पर समाप्त हुई थी और अब अगर बात की जाए तो काफी मुश्किलों से निकल चुकी है इंग्लैंड की टीम।
चलते चलते ये भी बता दीजिए कि फ्रेंच ओपन से क्या खबरें आ रही हैं।
जी अगर फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो आज दूसरा दिन है, लेकिन संतोष की बात यह है कि बड़े खिलाड़ियों में अभी तक कोई भी ऐसा उलटफेर देखने का मौका नहीं मिला है। एकल वर्ग के मुकाबलों की बात की जाए तो चेक खिलाड़ी टॉमस बर्डिच, स्लोवाकिया के बार्टिक लिजान और इटली के फेबियो फोगनीनी ने अपने पहले दौर के मुकाबले जीत लिए हैं और जब अगले कार्यक्रम में आएंगे तो बताएंगे कि कुछ और महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के परिणाम क्या रहे।
तब तक आ चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदेश कुमार गुप्त। और चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में अपनी सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पर मथुरा में जन कल्याण रैली में कहा कि अब दिल्ली में दलालों की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि एक साल में कोई घोटाला नहीं हुआ है। भारत में पड़ रही भीषण गर्मी में मरने वालों की संख्या 430 से ज्यादा हो गई है। इलाहाबाद में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्मी से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। नाइजीरिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक जीटी बैंक ने डीजल की कमी के कारण अपनी शाखाओं को बंद कर दिया। नाइजीरिया सरकार और इम्पोर्टरों के बीच चल रहे संकट की वजह से ईंधन की भारी कमी बनी हुई है और उद्योगों में कामकाज ठप है। मलेशिया की पुलिस ने दावा किया है कि थाईलैंड की सीमा के पास दूर दराज के जंगलों में 140 अनजान कब्रें पाई गई हैं। बीबीसी समाचार।
दिनभर का समय समाप्त होने को है। स्टूडियो संभाला था शाकिर आलम ने। रेहान फजल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।